मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन फूलों को माफ किया और दिल के गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाये हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल के। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी की बैटरी बिल्कुल चार्ज हो गई हाँ? आज हमारे बीच में हमारे अति आदरणीय सूर्या भाई जी अभी थोड़े टाइम में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे ज्ञान सरोवर परिसर के ब्रह्मा कुमार भाई जो यहाँ समर्पित रूप से सेवाएं करते हैं, तो यहाँ सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा के साथ साथ अपने अंदर छिपी हुई जो स्किल्स है, अपने अंदर रही हुई जो आर्ट्स है, वो हम सबके सामने रखना चाहेंगे। कई बार कई लोग कहते हैं आप करते क्या हो, तो भगवान के जब हम बनते हैं, भगवान के घर में जीवन समर्पित करते हैं, तो सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान हमारे से ऑलराउंडर सेवा करवाते हैं, और इतना ही नहीं ऑलराउंड विशेषताओं से भर देते हैं। तो ऐसे ही जिस ज्ञान सरोवर परिसर में आप इतने दिन, चार दिन पांच दिन से आप रुके हैं, तो आज हमारे बीच में हमारे दिलीप भाई और विजय भाई आप सबका मनोरंजन कराने के लिए बहुत सुंदर डांस की प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं, डमरू डांस। आपकी ताली में इतना दम नहीं है, भोलेनाथ जी सामने आ गए। बजनी चाहिए। बहुत सुंदर हमारे दीपक भाई, दिलीप भाई और विजय भाई ने सबके मन को इतना प्रसन्न चित कर दिया। आप सभी तीन त्रिदिवसीय आप सभी ने धार्मिक प्रभाग कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और सभी एक दूसरे से यही वर्णन कर रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में हम आ गए, अपनी जिम्मेवारी को हम भूल गए, हमें पता ही नहीं है कि आज कौन सा वार है ना? ऐसे फील हो रहा है ना सबको? सभी हमें कह रहे हैं कि दीदी हमें पता ही नहीं आज कौन सा वार है। तो सचमुच में आप सबको हमारी वरिष्ठ दीदियों ने, दादियों ने, हमारे महान जो स्पीकर्स है दीदियों ने इतना अच्छा जो ज्ञान आप सबको दिया है और आप सबने बहुत ही ध्यान से सभी बहुत अच्छे सेशंस अटेंड कर रहे थे तो आप सबने बहुत ही ध्यान से इस ज्ञान को सुना है बहुत अच्छी तरह से। अभी हमारा जो फर्ज है कि अब यहाँ हम सब ने अच्छा अच्छा किया, किया कि नहीं किया? स्वर्ग है, भोजन इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अभी अभी हम सभी खड़े हो जाएंगे और भाई साहब का अभिवादन करेंगे। ओम शांति। आज हमारे बीच में हमारे अति आदरणीय राजयोगी तपस्वी मुहूर्त भ्राता सूर्या भाई जी, वास्तव में तो जैसे सूर्य एक दिन भी अपनी रोशनी दिए बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही हमारे भाई साहब एक दिन भी अपनी ज्ञान की रोशनी दिए बिना, सेवा किए बिना रह नहीं सकते। ऐसे हमारे अति आदरणीय भ्राता जी के लिए एक बार करतल ध्वनि से स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। अभी अभी मैंने सुना कि आप बहुत लंबी यात्रा करके हमारे बीच आज पहुंचे हैं, तो हम सबका बहुत परम सौभाग्य है कि आपके मुखारविंद से हम बहुत अनुभव युक्त बातें सुनेंगे। तो हमारे सूरज भाई जी 1964 से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े और साथ साथ 1968 में आपने इस अमूल्य जीवन को परमात्मा की सेवा में सफल किया, समर्पित किया। इसके बाद हमारी एक विंग है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, इस विंग के आप एक एक्टिव मेंबर भी हैं, चेयरपर्सन हैं और साथ साथ आप बहुत सारे रिसर्चेस करते हैं। जैसे कि हमने सुना है हम टाइम टाइम पे कि जैसे किसी को कैंसर है, डायबिटीज है, ऐसी कई विधियों को हम राजयोग मेडिटेशन से कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल मेडिटेशन के द्वारा आपने औरों की बीमारियों को ठीक किया है। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, आपने अपने ज्ञान के द्वारा विचार सागर मंथन करके बहुत सारी बुक्स आपने लिखी है, जैसे टेंशन मुक्त, तनाव मुक्त जीवन, पॉजिटिव थिंकिंग, श्रेष्ठ जीवन कैसे बनाए, प्रभु मिलन कैसे मनाए, श्रेष्ठ जीवन की नई नई प्रेरणाएं कैसे लेकर के आए, ये हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है। और अगर आपके पास टाइम हो तो वो आप पढ़ना भी। और इसके साथ साथ आपने देश में भी नहीं, विदेश में भी जाकर के शिव बाबा के ज्ञान को, शिव बाबा परमात्मा पिता को प्रत्यक्ष करने का बहुत सुंदर कार्य किया है और सैकड़ों सम्मेलनों में आपने भाग लिया है। ब्रह्मा कुमारीज की कई मूवीज, उसमें भी आपने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया है। और साथ साथ आप सबको बता दें, हमारी वर्ल्ड फेमस टीवी चैनल है पीस ऑफ माइंड चैनल, जिसमें आपका प्रतिदिन समाधान सीरियल आता है। कौन कौन देखते हैं? वेरी गुड, सभी जानते हो, फिर तो सभी जानते हो हैं? तो समाधान चैनल के माध्यम से कई बार हम कभी देखने मिस हो जाते हैं, लेकिन भाई बहन हमें आके बताते हैं, आज सूरज भाई साहब ने ये बात बहुत अच्छी बताई दीदी। हाँ, तो आप सभी भी जो नहीं देखते हैं उनको भी आप इंस्पायर करो कि आज सभी को समाधान की आवश्यकता है। और साथ साथ हमारा एक बहुत श्रेष्ठ टॉपिक आता है मुरली चिंतन का, जो कई लोगों को नहीं भी समझ में आता है, लेकिन भ्राता जी के समझाने से बहुत लोगों को सबके थॉट इतने पॉजिटिव बन गए। और इसी तरह से हमारे जितने भी त्योहार आते हैं तो उस त्योहार के आध्यात्मिक रहस्य को भी सबके आगे साझा करते हैं। तो ऐसे हमारे बीच में महान विभूति को पाकर आज हम बहुत बहुत धन्यवाद धन्य हो गए। तो आज सभी के मन में कुछ न कुछ प्रश्न है जो हम भाई साहब के माध्यम से उत्तर चाहेंगे।
पहले पहले मैं बोलूं?
हाँ ठीक है।
ओम शांति। कैसा लग रहा है आप सभी को यहाँ? इंद्र भाई बहुत अच्छा, महाराज बैठे हैं कई, अच्छा लग रहा है। ये स्थान 95 से पहले जहाँ हम बैठे हैं, चीतों का और भालुओं का ही स्थान था, उनके अलावा यहाँ कोई मनुष्य नहीं आता था। हम जब पहली बार आए तो इतने थके, चढ़ाई उतराई इतनी थी, सोचा दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। फिर तो यहाँ कोई एक रूम भी नहीं बन सकता था, ऐसी स्थिति थी। लेकिन अब ये सुंदर स्थान जिसमें रूहानी आध्यात्मिक वाइब्रेशंस भरपूर हैं, यहाँ रहने वाले बहुत पवित्र आत्माएं, तो परमात्म मिलन जो सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य होता है, उसका रसास्वादन, उसका परमानंद आप राजयोग के माध्यम से कर सकते हैं। ये ज्ञान जो यहाँ दिया जाता है, आप में से कईयों को कुछ बातें नई लगी होंगी, कभी सुनी नहीं थी, शास्त्रों में भी शायद नहीं थी, ऐसी भी लगी होंगी, लेकिन अगर आप उनकी स्टडी करेंगे तो आपको उनकी गुह्यता समझ में आए, क्योंकि 2-3 दिन में कुछ ज्यादा मनुष्य समझ नहीं सकता है, कम से कम 6 मास तो लगते हैं किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए। तो आप सब यहाँ आए, बहुत अच्छा किया। हम लोगों ने जो एक विशेष काम किया जन सरोवर में, जब ये स्थान बना तो यहाँ एक डिपार्टमेंट रिसर्च का भी खोला गया, आप में से कईयों ने देखा होगा, सामने जो हॉल है 13 नंबर हॉल में उसका सारा सेटअप है, तो उस पे रिसर्च करने का काम शुरू हुआ, बहुत चीजों पे, आध्यात्मिकता का इफेक्ट क्या होता है जीवन पर। तो मुझे एक टॉपिक दिया गया पहले ही समय में, पहले ही वर्ष जब वो कार्य शुरू हुआ, कि मन की शक्ति क्या है और हमारे एक एक विचार का इफेक्ट हमारे जीवन पर, हमारी बीमारियों पर, हमारे काम धंधों पर, बच्चों पर क्या पड़ता है, इसके बारे में नई नई रिसर्च करनी थी प्रैक्टिकल। उस टाइम जिस ग्रुप को मुझे दिया गया उसमें 300 भाई बहने थे, सारे संसार से आए थे, वो शुरुआत थी। तो हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में एक लैब जैसी खुलवाई कई जगह, कि हमारी मन की शक्ति का बीमारियों पर क्या इफेक्ट होता है, इसको वहां रीड किया जाएगा। कई जगह मेडिटेशन सेंटर खुले हॉस्पिटल्स में और इस पर कार्य प्रारंभ हुआ। तो मैं आपको बताऊं, ये जो हमने समाधान सीरियल चालू की, ये वो बहुत सारे अनुभव प्राप्त करने के बाद हमारा ख्याल था कि ये ऐसी सुंदर चीजें हैं जिसको न डॉक्टर्स जानते हैं, न मनोवैज्ञानिक जानते हैं, संसार के विद्वानों को जिसका ख्याल नहीं है, जो शक्ति हमारे पास है, हमारे अंदर है, उसको हम भुला बैठे हैं, उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम भिन्न भिन्न क्षेत्र में यूज करें। तो मैं बताऊं आपको, मैंने सोचा हम 21 सीरियल करेंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा, लेकिन पहले 30 सीरियल केवल विद्यार्थियों पर पूरे हो गए, फिर हमने सोचा 20 और कर देते हैं, 50 हो जाएंगे, 50 हो गए, इनकम्प्लीट रह गया, सोचा चलो 100 करके समाप्त कर देंगे, 100 हो गए, क्वेश्चंस आने लगे, समस्याएं आने लगी, हमें कुछ स्टडी नहीं करनी पड़ी, बातें सारे संसार से आने लगी ईमेल के माध्यम से। 100 पूरे हुए तो हमें एक संकल्प आया कि 365 दिन के लिए 365 कर देते हैं, रोज एक दिखाएंगे, रिपीट करेंगे, 365 भी हो गए, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ तो वो 1000 हो गए। तो हमने भी नहीं सोचा था कि इतने हो जाएंगे, संसार की हर समस्या को उसमें लिया गया, विद्यार्थियों की, माताओं बहनों की, जो धंधे करते हैं व्यापार उनकी, जो नौकरियों में है उनकी, जिनको समस्याएं आ रही, कोर्ट केसेज वालों की, 35-35 साल से केस चल रहा है, हल ही नहीं हो रहा है, उसको क्या करें, अचानक जीवन में विघ्न आने लगे हैं, क्या करें, इन सब पर मन की शक्ति से बहुत ही सुंदर परिणाम हमारे सामने आए। और मैं तो ऐसा देखता हूँ कि वो जो परिणाम आए वो हमारे लिए विजडम बन गए, विवेक शक्ति बन गए, उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो गई। जो चीज हम जानते नहीं थे, जो चीज हमने पढ़ी नहीं थी, वो हमें प्राप्त हुई, वो हमें ज्ञात हुई। तो हमारे पास, मैं आप सभी को यही कहूंगा, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे, हमारे पास मन की बहुत जबरदस्त शक्ति है। अगर मनुष्य निगेटिव बहुत रहता है तो वो शक्तियां उसकी नष्ट होती रहती हैं, तब वो कितना भी अच्छा सोच ले कभी वो सफल नहीं होता। उन बहनों की बात मैं बताऊं जिनके हमें जिनकी ये समस्या आई कि हम बहुत सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं हमें भी पता नहीं है, हम बहुत सोच रहे हैं, फिर हम निगेटिव सोच रहे हैं। कई कन्याएं तो ऐसी जो पढ़ती हायर एजुकेशन में और ये बता के रोने लगती थी, हमारा क्या होगा, याद नहीं है कुछ भी, एग्जाम आ गया है। छोटी छोटी चीजें उन्हें सिखाने से उनकी एकाग्रता बढ़ गई, मेमोरी पावर बढ़ गई, बड़े वंडरफुल अनुभव, अभी बताया, कल फोन आ गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, हम उन्हें पहचाने। इसलिए यहां जब आप आते हैं तो हम एक चीज कहते हैं, अपने से मिलो। कितनी गहन शांति है हमारे अंदर, उससे मिलो। आपको शांति की तलाश में इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो आपके अंदर है। कितनी शक्तियां हैं हमारे अंदर, उनसे मिलो। कितना प्रेम भरा हुआ है, कितनी प्योरिटी भरी हुई है, जिसको हम भुला चुके हैं, उनसे मिलो। जीवन जग जाएगा, मैं ये शब्द बोलूंगा। सो गए हैं बुद्धिमान लोग हमारे देश के भी, संसार की तो बात छोड़ो, वहां तो भौतिकता का प्रचार है। जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वहां तो अध्यात्म को पूरी तरह लोग भूल गए हैं। बोर्ड लगाते हैं बड़े बड़े सड़कों पर, खंभों पर, क्या भगवान है, यस और नो में उत्तर दो। यहां तक पहुंच गए हैं वो। हमारा देश तो फिर भी धर्म प्रधान देश है, यहाँ धर्म की जड़ें बहुत ही मजबूत हैं। आज हम देख रहे थे, अजमेर में हम थे, कावड़ ला रहे थे, वहां भी हमने पहली बार देखा, उस कावड़ में छोटे बच्चे भी थे, लिए हुए थे, छोटे बच्चे माना 10-12 साल के, कुछ कन्याएं भी थी हमारी साथ। एक बहन थी, उसने कहा ये बहुत सुंदर बात है, यही लोग हमारे देश की परंपरा को जगाए रखेंगे, अगर ये उसमें शामिल ना हो तो हमारी बहुत सारी परंपराएं लोप होती गई हैं। तो भारत तो ऐसा एक महान देश है, पैदल यात्रा करके लोग आते हैं। हमारे यहाँ भी अदर देवी का मंदिर है, अब प्रथा बन गई है, उसको भी शिव शक्ति का नाम दे दिया गया है, आराध्य देवी है वो, बहुत सुंदर है मंदिर, थोड़ा चढ़ाई है, बहुत सारी सीढ़ियां, वहां लोग पैदल आते हैं। हम देखते हैं उसमें सभी युवक झंडे लिए हुए, माताओं की जय जयकार करते हुए देवियों की वो आ रहे। हमें बहुत खुशी होती है कि देखिए भारत की परंपरा इतनी श्रेष्ठ है, यहां धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि युवा वर्ग जिसको लोग सोचते हैं वो राह भटक रहे हैं, सभी राह नहीं भटक रहे, बहुत अच्छे युवक धर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े काम करे। हमारे यहाँ जब ये ज्ञान सरोवर बना, 400 युवक ही अपने जीवन को डेडिकेट करने आए थे, समर्पित करने, अच्छे पढ़े लिखे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे। इन्हें इंजीनियरिंग किया था, किन्हें एमटेक किया था, किन्हें एमकॉम किया था, बीकॉम, बीए, बीएससी, तो बहुत सारे थे, उनमें से हमने 200 चुने थे। तो युवक जिनमें धर्म की जड़ें स्ट्रांग हो रही हैं, ये हमारे देश के लिए भी गर्व की बात है। तो आप सभी बहुत सुख पाकर यहां से लौटेंगे निश्चित रूप से। ये सुख खाने पीने का नहीं, ये सुख ईश्वरीय सुख है, ये हमारा आंतरिक सुख है जो आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हमें प्राप्त होता है। अब मैं बहन जी को कहूंगा प्रश्न पूछे और मैं जो आपको उत्तर दूंगा वो बता दो, किसी ग्रंथ के आधार पर नहीं, गीता भी हमारे पास है, मैंने उसकी व्याख्या भी की है दो बार, वीडियो से लिखकर नहीं, वीडियो में उसकी व्याख्या की है। उपनिषद उनके आधार पे भी नहीं, दर्शनों के आधार पे भी नहीं। हम जो आपको उत्तर देंगे वो उस ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर होगा जो हमने इन कानों से भगवान के द्वारा सुना है। जैसे आपने अब जानते हैं सभी, अर्जुन ने गीता ज्ञान सम्मुख सुना, अपने कानों से सुना, सब कुछ दिव्य आंखों से देखा। हमने भी भगवान का वो ज्ञान अपने कानों से सुना है, जो परम सत्य है, अंतिम सत्य है, उसके आधार पर मैं आपको उत्तर दूंगा। कोई बात अगर वाद विवाद की हो, मैं उसमें कभी नहीं जाता हूं आजकल। मैं सीधा जो भगवान ने बताया वो आपके सामने रखूंगा, जो हमारे लिए परम कल्याणकारी है। हाँ बहन जी, रखो।
भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। कहने का मतलब है कि आज संसार के अंदर देखा जाए तो एक पार्क को कल्टीवेट करना है तो कितनी मेहनत लगती है, लगती है ना? इसी प्रकार से अगर जंगल को बनाना है तो मेहनत लगती है, नहीं लगती है? तो भाई साहब का कहने का मतलब है कि अगर हम अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाए, इतना स्ट्रांग बनाए, तो आधी समस्या तो हमारी वहीं समाप्त हो जाती है। भाई साहब, एक बहन ने पूछा है कि मैंने बहुत सारे मेडिटेशन कोर्स किए हुए हैं, तो उन सभी कोर्सेस में बताया जाता है आंखें बंद करके मेडिटेशन करने के लिए, परंतु इसी संस्था में मैंने देखा कि आंखें खोल करके मेडिटेशन करना है, तो कृपया इसके बारे में बताएं।
भगवान ने आकर हमारी बंद आंखें खोल दी, आपको खुशी होनी चाहिए। बंद ही थी। मनुष्य को आदत हो गई है, क्योंकि जब से योग प्रथा हमारे देश में प्रारंभ हुई, महर्षि पतंजलि से प्रारंभ हुई थी, आंख बंद करके ही हुई। और लोगों ने सोचा आंख बंद करके ही ध्यान एकाग्र हो सकता है, आंख बंद करके ही मन को पूरा शांत किया जा सकता है, उसको एकाग्र किया जा सकता है। लेकिन भगवान ने जब राजयोग सिखाया तो कहा, मुझसे तुम्हें दृष्टि लेनी है, तो आंख बंद करेंगे तो दृष्टि कैसे लेंगे? बाबा यहां आते थे, यहां नहीं, वहां पांडव भवन में ब्रह्मा के तन में आते थे, मैंने भी देखा है बहुत समय तक। बाबा के चेहरे पर, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव निराकार की प्रवेशता होती थी, निराकार जिसको आप लोग ब्रह्म भी कहते हैं, जब उसकी प्रवेशता होती थी तो बाबा के नैनों में बहुत दिव्यता होती थी, और जिस पर वो नजर पड़ती थी वो सचमुच निहाल हो जाता था। ये एक की कहानी नहीं, उस टाइम हमारे पास लाखों तो नहीं होते थे, पर हजारों के अनुभव थे। तो उन्होंने राजयोग सिखाया, और राजयोग का अभ्यास कर्म करते हुए करने का आदेश दिया। कर्म करते तो आंखें बंद नहीं की जा सकती। आप जो यहां महात्मा या पढ़े लिखे कोई विद्वान बैठे हैं, वो जानते होंगे कि प्राचीन काल में कई ऋषि मुनि चलते फिरते भी समाधिस्थ रहते थे। आदि शंकराचार्य की भी ये कहानी प्रसिद्ध है। बाबा ब्रह्मा भी चलते फिरते समाधिस्थ रहे। उनके माध्यम से जो राजयोग परमात्मा ने सिखाया, उसमें पहली चीज थी चलते फिरते कर्म करते राजयोग करना है तो आंखें खोलना है। अब गहरी बात पर आ जाऊं, परमात्मा के वाइब्रेशंस जब हमें लेने होते हैं, हमें केवल मन को शांत नहीं करना है, मन को पावरफुल बनाना है ताकि वो विभिन्न परिस्थितियों में शांत रह सके। हमने बैठकर शांत कर लिया 15 मिनट एक घंटा, और जब हम कर्म क्षेत्र पर आए, जब परिस्थितियों से हमारा सामना हुआ, हम विचलित हो गए, परेशान हो गए, टेंस हो गए। परमात्मा ने राजयोग में सिखाया तुम्हें अपने मन को बहुत शक्तिशाली भी बनाना है, परमानंद से भी भरना है, डीप साइलेंस में भी ले चलना है, परम निस्वार्थ प्रेम से भी स्वयं को भरना है। तो परमात्म शक्तियां जब हमारे अंदर आती हैं, वो उनका सबसे ज्यादा प्रभाव आंखों के द्वारा होता है, ये सबको पता हो। एक माँ अपने बच्चे को प्यार की नजर से देखे, क्या होगा? बच्चा हंसते हुए गोद में आ जाएगा, आपने कुछ कहा नहीं। एक माँ अपने बच्चे को जरा टेढ़ी नजर से देखे, रो के भागने लगेगा, कुछ कहा नहीं। ये आंखें बहुत बड़ी बातें करती हैं, इनसे वाइब्रेशंस प्रवाहित होते हैं। इसलिए परमात्मा ने सिखाया, आंख खोल कर एकाग्रता का अभ्यास करो। देखो एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, आंख खोल के पढ़ेगा ना, उसको एकाग्रता चाहिए। अगर उसके अंदर एकाग्रता नहीं होगी तो वो चार घंटे पढ़ के भी जीरो, कुछ याद नहीं होगा। तो हमारी आंखों से ही वाइब्रेशंस रिसीव होते हैं, आंखों से ही फैलते हैं। इसलिए आपने देवताओं के चित्रों में देखा होगा, श्री कृष्ण की कहानियों में सुना होगा, राक्षस ने गोकुल में आग लगा दी, आग जलने लगी, श्री कृष्ण आ गए, खड़े हो गए, आंखों से वाइब्रेशंस फैलने लगे, आग बुझने लगी, इधर अदृष्टि की आग शांत हो गई। इसलिए आंखें खोल कर ही हमें अभ्यास करना है, ये इसके पीछे रहस्य है। आपको आंख बंद करने की आदत है, मैं कहूंगा थोड़ा बंद करके थोड़ा खोल के अभ्यास कर लो, तो धीरे धीरे पूरी खुल जाएगी।
एक बार भाई साहब की मैं क्लास सुन रही थी, तो भाई साहब बड़ी हंसी की बात सुना रहे थे कि हम आंखें बंद करके मेडिटेशन तो करते हैं, सबको अच्छा लगता है कि थोड़ी देर के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, लेकिन 10 मिनट के बाद देखो तो सब बिल्कुल साइलेंस में चले जाते हैं, मीन सब सो जाते हैं,
सो जाते हैं,
है ना। तो बड़ी मतलब बड़ी अच्छी बात थी कि कम से कम आंखें खोल के अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो एक तो हमारा ध्यान इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है। तो भाई साहब ने बहुत अच्छा आंसर दिया, शिव बाबा के पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेने के लिए आंखें। दूसरा पूछा है, हमने पौराणिक कथाओं में और ग्रंथों में सुना अर्धनारीश्वर, शंकर जी का फॉर्म दिखाते ना अर्धनारीश्वर का, और शिव शक्ति के बारे में, तो यहाँ जो हम योग लगाते हैं तो शिव बाबा का ही योग क्यों लगाते हैं, क्या कारण है?
तो किसका लगाएं? आगे भी तो पूछा होगा,
कृपया इसका समाधान बता दीजिए।
क्योंकि शिव बाबा सुप्रीम है, सबसे ऊपर, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले, इसलिए जो सबसे सुप्रीम है, जो दाता है, जिससे सभी देवताओं को भी प्राप्त हुआ है, हम भी उसी से प्राप्त करते हैं, इसलिए योग का अभ्यास उससे ही करते हैं। भक्ति करने वाले बहुत यहाँ बैठे होंगे, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः, बिल्कुल स्पष्ट अंतर है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और अंत में गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सुप्रीम है, जो सबसे ऊपर है। देखिए हमारी भक्ति के चित्रों में एक एक चीज मिस हो गई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तो दिखाए गए सब जगह, महादेव को भी तपस्या में दिखाया हुआ है, ब्रह्मा को भी चार मुखी, विष्णु जी को भी अपने चारों हाथों में चार चीजें लिए हुए, लेकिन तीनों से काम कराने वाला कौन, ये मिस हो गया। इन तीनों के भी ऊपर कोई है परम सत्ता जो निराकार है, उससे योग लगाने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। अभी आप ब्रह्मा से योग लगाएंगे कुछ चीजें मिलेंगी, विष्णु से लगाएंगे कुछ चीजें मिलेंगी, महादेव जी से लगाएंगे कुछ चीजें मिलेंगी, सर्वस्व प्राप्तियों के लिए उससे ही योग लगाना है जो सब कुछ देने वाला है, जो सागर है। इसलिए निराकार शिव से योग लगाया जाता है। जो अर्धनारीश्वर की बात आपने कही उसका मैं आपको रहस्य बता देता हूं। परमात्मा से हमारा एक नाता ये भी है कि वो हमारा परम प्रियतम है, सबका, बहनों का नहीं, भाइयों का भी परम प्रियतम, क्योंकि ये नाता आत्मा और परमात्मा का है, देह का नहीं। वो हमारा परम प्रियतम है, सीधे अर्थों में पति है, पतियों का पति। इसलिए आधा रूप नारी, आधा रूप महादेव जी का दिखाया है, यानी कंबाइंड फॉर्म हो गए, जुड़ा हुआ फॉर्म। तो हम जब उससे योगयुक्त हो जाते हैं तो हम उससे कंबाइंड हो गए, इसको ही अर्धनारीश्वर के रूप में चित्रित कर दिया। क्योंकि निराकार को कैसे चित्रित करेंगे, तो उनको महादेव जी के रूप में चित्रित कर दिया है।
ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ
शिव और शक्ति एक नहीं है, शिव से शक्तियां मिलती हैं। शक्ति हम जब उससे प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मान लो आप उससे योग लगाएं और आप उसकी शक्तियां प्राप्त कर लें, तो वो शिव, आप उसकी शक्ति। पूछ सकते हैं अगर कोई बात बीच
हाँ,
में
किसी
पूछ
को और भी प्रश्न है तो पूछ सकते।
नहीं, बीच में जो हम उत्तर देंगे
अच्छा।
उसमें भी आप कुछ पूछ सकते हैं। तीसरा,
एक बहन ने लिखा है, हर दिन नई नई समस्याएं आती हैं, तो उसमें हम कैसे उस समस्याओं को हैंडल करें। जैसे फैमिली में है, सोसाइटी में है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको कैसे हम हैंडल करें, कैसे समस्या हमारी।
प्रश्न बहन जी ने छोटा सा कर दिया और समस्याएं कह दिया, बहुत सारी आती हैं। और मैं उत्तर छोटा भी दे सकता हूं, छोटा उत्तर है, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। अगर मन को शक्तिशाली बना दिया जाए, पॉजिटिव बना दिया जाए, तो सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। देखिए, एक व्यक्ति उन दिनों जब ये बात हमने बाबा के महावाक्यों में सुनी थी, दिल्ली में एक प्रैक्टिकल केस हुआ था, दो आइसक्रीम वाले पास पास बेच रहे थे। एक आइसक्रीम वाले ने दूसरे वाले को, ग्राहक को बुला लिया, मेरी अच्छी है इधर आ जाओ। अब वो जो था जिसका बुलाया उसको गुस्सा आ गया, लड़ाई शुरू की, वाद विवाद हुआ, चाकू से काटते थे उन दिनों आइसक्रीम, आजकल जैसी नहीं होती थी। उसने उसको चाकू मार दिया, वो दिल पर लग गया, उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हुई, वो आजीवन जेल में चला गया, दो परिवार नष्ट हुए, परेशानियों में पड़ गए। कितनी बड़ी समस्या, शुरू कहां से हुई, क्रोध से। कमजोर मन था तो क्रोध उत्पन्न हुआ कमजोर मन में। मन शक्तिशाली होता वो शांत रहता, वो कहता अच्छा भाई उससे ले लो, ये भी तो कहा जा सकता है और लोग कहते हैं हाँ भाई उससे ले लो। तो कमजोर मन को हमें शक्तिशाली बनाना है। समस्याएं भिन्न भिन्न तरह की आती हैं, आजकल बीमारियों की समस्या ज्यादा उग्र रूप लेती जा रही है। उसमें भी WHO, आपने सुना होगा ये शब्द, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि 2020 से संसार में डिप्रेशन महामारी हो जाएगी। मुझे याद है अब से 10 साल पहले हार्ट डिजीज को महामारी बोला था, बढ़ती गई। अब से 5 साल पहले कैंसर के लिए बोला था कि महामारी बनती जा रही, बहुत बढ़ रही है। उसका कारण खानपान है, खानपान और नहीं, खानपान पर डाले जाने वाले कीटनाशक दवाइयां खेतों में, जो रिफाइंड तेल माताएं घरों में यूज करती हैं, वो भी बड़ा नुकसानदायक है। कीट, अब भिंडियों पर कीटनाशक छिड़क दिए हैं, भिंडी पे छिड़केंगे, बैंगन पे छिड़केंगे, बैंगन भिंडी को बहुत कम, भिंडी तो छिलते ही नहीं, बैंगन को भी सब नहीं खिलेंगे, आपने ऐसे ही धो धा के बना दी, वो कीटनाशक आपके पेट में गए, वो अनेक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। तो ये समस्याएं भिन्न भिन्न बढ़ती जा रही हैं। मैं लोगों को सिखाता हूँ, अभी भी अजमेर में कई केस आ गए। कल इसी समय एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम था, इस हॉल से डबल जगह में लोग बैठे थे, वो एक राजा का बहुत सुंदर होटल है, पैलेस जैसा, उसने बीच का सारा आंगन फ्री दिया था बहनों को, फ्री, बहुत सुंदर, बड़ी स्क्रीन भी लगा के दी थी, कैमरे वाले भी दिए थे, समस्या और समाधान का प्रोग्राम था। कईयों के ये प्रश्न थे, ये बीमारी, घुटने दर्द, मानसिक रोग, कैंसर। मेरा सबसे पहला उत्तर एक है कि तन को कितनी भी बीमारियां क्यों ना आए, अगर हम मन को बीमार न करें तो तन की बीमारी जल्दी विदाई लेंगी। लेकिन जब हम अपने मन को बीमार कर देते हैं, बहुत भारी पड़ता है। मैं आपको उदाहरण दूं, एक डॉक्टर बहन आई, कहा मेरे पति को प्रोस्टेट में शुरुआत हुई है कैंसर की। वो खुद सर्जन है, ये बहन सर्जन है, हम सब जानते हैं, वो डॉक्टर भी जानता है जिसको प्रोस्टेट में कैंसर शुरू हुआ है, कि इसको बढ़ने में भी 15 साल लगेंगे और इसको अभी ठीक किया जा सकता है। लेकिन कहा वो डॉक्टर आधा मर गया, चुप हो गया, उदास रहने लगा। वो उसको कल प्रोग्राम में नहीं ले पाए, वो बड़ी पछता रही थी, क्योंकि 25 किलोमीटर दूर से आई थी, कि काश मैं उसको भी ले आती तो आज वो पुनः जिंदा हो जाता जो आधा मरा है। तो ये जो बात है, सभी भाई बहने इस चीज को अंडरलाइन कर लें, आप यहां से ले जाएं ये फॉर्मूला, बीमारी कितनी भी क्यों ना आ जाए, समस्याएं कितनी भी क्यों ना आ जाए, मन को बीमार नहीं करना है तो अनेक चीजें ठीक हो जाएंगी। कल ही स्टेज पर वो कन्याओं ने डांस भी किया, कहां से छोटा बच्चा भी आ गया, कितना था, 3 साल का, बड़े मजे से ताली बजा रहा, उसको कोई डर नहीं लग रहा, स्टेज पे घूम रहा, उनके आसपास डांस कर रहा। मैंने कहा ये बच्चा क्यों निश्चिंत है, सोच लो, कोई चिंता नहीं उसको। उस स्टेज में करंट भी आ गया था लास्ट में, मेरे को भी लगा पता नहीं कहां से आ गया, एक बहन को तो ज्यादा ही लग गया। क्यों ये बच्चा निश्चिंत है, क्योंकि इसकी केयर इसके मां बाप करते हैं। आप भी भगवान के बच्चे बन जाओ तो इन सभी चिंताओं से बच जाओगे, वो केयर करेगा आपकी। कि सत्य को पहचान लो। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिसका प्रयोग हमने बहुतों से कराया और रिजल्ट बहुत सुंदर है, भावनात्मक चीज है ये। अपने मन की सारी समस्याएं, अपनी टेंशन, अपनी चिंताएं और अपनी बीमारियां भी उसको अर्पित करो। ये कला सीखनी है। भक्ति में बहुत गाया है, तन मन धन सब तेरा, आगे क्या बोला माताओं ने, तेरा तुझको अर्पण, और घर आके तन मन धन सब मेरा, मेरा मेरे पास क्या लागे तेरा, कह दिया ना। अभी तन मन धन तो किया ही नहीं अर्पण, वो तो झूठ मूठी गाते रहे, ठीक है, बुरा नहीं मानना। अर्पण कर दो अपने मन की चिंताओं को, अर्पण कर दो अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को, वो बहुत मदद करेगा। वो सच्चा माता पिता है, वो आपकी बहुत केयर करेगा। मेरे अनुभव है, मेरी आंख में तकलीफ हुई है 1 साल से, कभी कभी ज्यादा दर्द हो जाता है, इसमें दवाई आदि उसकी होती नहीं, मैं क्या करता हूं पता, मैं शिव बाबा का आह्वान करता हूं। मैंने अब भी किया, परसों भी किया, बहुत अच्छी तरह, क्योंकि गर्मी से दर्द हो जाता है, ठंड से नहीं होता। वहां गर्मी थी, एक जगह बहुत गर्मी थी, प्रोग्राम था हमारा, 500 लोग थे, योग की भट्टी चल रही थी, लेकिन स्टेज पे पंखे होते नहीं, हॉल में तो पंखे थे, कूलर भी रखा, लेकिन गर्मी बहुत थी, आंख में दर्द हो गया। मैंने क्लास कराते कराते आह्वान किया, शिव बाबा आप सुप्रीम सर्जन हो, अपनी सेना सहित जरा आ जाओ। उसकी बहुत बड़ी सेना है, वैद्यों का वैद्य है वो, बहुत सारे फरिश्ते उसके साथ हैं, शिव शक्तियां उसके साथ हैं, जिनकी आप मंदिरों में पूजा करते हैं वो सब उसकी सेना में हैं। मैंने कहा अपनी सब सेना को लेकर जरा आ जाओ, आंख में दर्द बहुत हो रहा है, अब इसको ठीक कर दो। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चला वो कहां चला गया, मैं भूल ही गया। मैं ये भी भूल गया कि मैंने उसको बुलाया था, और मैं ये भी भूल गया कि मुझे पेन था। तो अपनी सभी समस्याएं प्रभु अर्पण करना सीखेंगे तो वंडरफुल अनुभव होंगे जीवन में। वो हमारा माता पिता भी है, परम शिक्षक भी है, और परम सदगुरु भी है। उसको अपना सच्चा सदगुरु बना लो। वो न केवल आपको मंत्र देगा, आपकी केयर करेगा। मैंने उससे एक चौथा नाता भी जोड़ा हुआ है, गुड फ्रेंड, गॉड फ्रेंड, खुदा दोस्त। इसके मेरे बहुत ज्यादा अनुभव हैं। नाता जोड़ो उससे, आपकी समस्याओं को वो हटने लगेगा। लेकिन जो बात पहले मैंने कही, अपने मन को बहुत स्ट्रांग बनाओ, कमजोर नहीं। सवेरे उठते ही संकल्प किया करो। देखिए मैं समाधान आपके सामने रख रहा हूं, जिसका प्रयोग किया है लाखों लोग इस चीज को सीख गए हैं सारी दुनिया में। मैं तो जब फोन आते हैं तब समझ में आता है मुझे कि एक सुंदर बात संसार के बहुत लोगों ने सीख ली, मुस्लिम्स ने भी सीख ली, क्रिश्चियंस ने भी सीख ली, बुद्धिस्ट ने भी सीखी, और हिंदुओं में तो लाखों ने, शायद करोड़ तक पहुंच गई वो बात। हम सर्वशक्तिवान भगवान की संतान हैं या नहीं? मैं आपको ये डीप रियलाइजेशन देना चाहता हूं। सोचो मेरे साथ, वो मेरा परम पिता है, तो इसका अर्थ है वो मेरा है या नहीं? वो मेरा है, जो कुछ उसका है वो। ये है थोड़ी हायर स्टेज हमारी साधनाओं की। वो मेरा है, उसका सब कुछ मेरा है। जैसे आपके बच्चे आपके पास अधिकार से आ जाते हैं ना, पापा ये चाहिए, अब पापा को देना पड़ता है पैसे कहीं से भी लाए। उस पर भी हम अधिकार कर सकते हैं, अधिकार की फीलिंग। तो देखिए टाइगर का बच्चा क्या होगा, बोलो जरा, शेर का बच्चा। और हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम बहुत पावरफुल हैं। स्वीकार कर लो आप इस सत्य को, हम बहुत। इसके लिए एक शब्द है, वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सवेरे उठ के ही आप इसको 5 बार याद कर लो, आंख खुलते ही आपकी सोई हुई शक्तियां जगेंगी। जब शक्तियां जग जाती हैं तो उनसे वाइब्रेशन फैलते हैं चारों ओर, आपकी आंखों से फैलेंगे, हाथों से फैलेंगे, और ये वाइब्रेशंस समस्याओं को नष्ट करेंगे। ये वाइब्रेशंस आप अपनी बॉडी को भी दे सकते हैं, मैं आत्मा यहां हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, ब्रेन में भी जा रही हैं, बॉडी में भी जा रही हैं, अंग अंग को ठीक कर रही हैं। बहुत अच्छे अनुभव होंगे, इससे आपकी शक्तियां बढ़ेंगी। जिन बच्चों की एकाग्रता नहीं होती पढ़ाई में, उन सबको हम यही सिखाते हैं, सवेरे उठकर 108 बार लिख लो 21 दिन तक, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जैसा मैंने कहा, एक लड़की का अभी अभी फोन, मैं अजमेर जा ही रहा था, रास्ते में फोन आया, एग्जाम आने वाला है, मैं बहुत पढ़ रही हूं, कुछ याद नहीं है, क्या करूं? मैंने उसे कहा अभी बैठ कर लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 108 बार, कल सवेरे लिखना, शाम को लिखना, 7 दिन तक सवेरे शाम लिखो, फिर 21 दिन लिखना सवेरे। अगले दिन रात को उसका फोन आ गया, मैंने 3 बार लिख लिया है, मेरी एकाग्रता बढ़ गई है, अब 4 घंटे से मैं पढ़ रही हूं, मुझे सब याद है। इतने सुंदर रिजल्ट हमें मिलते हैं, जहां मनुष्य रोने लगता है, जहां उसको कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता, मन भटक रहा हो, चाहे श्वासों पे ध्यान लगा लो, विपश्यना कर लो, चाहे संकल्पों पे ध्यान लगा लो, नहीं लगेगा। एकाग्रता नष्ट हो गई, कुछ नहीं होता, इससे फटाफट होने लगती है। तो हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये संकल्प आप अपने साथ ले चलेंगे। और कुछ और सारे प्रयोग हैं समस्या के, भिन्न भिन्न समस्याओं में हम जो कराते हैं, 21 दिन की योग साधना भी कराते हैं अनुष्ठान जैसा, 1 घंटा रोज, उनसे बहुत चीजें ठीक होती हैं। ओम शांति।
भाई साहब ने बहुत सुंदर जवाब दिया। इसमें एक बहन का जो प्रश्न था कि मुझे डिप्रेशन है और मैं 30 साल से मेडिसिन ले रही हूँ जिससे मुझे बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ापन आता है, तो आपके प्रश्न का उत्तर भाई
नहीं, ये प्रश्न का उत्तर रह गया है, सुन लें आप। डिप्रेशन संसार में बढ़ रहा है और मैंने कम से कम खुद अब तक 500 केस तो डील किए होंगे डिप्रेशन के पिछले 5-7 सालों में। पहले एक एक आता था हफ्ते में एक, उससे पहले मास में एक आता था, आजकल रोज 5-7। तो रोज 5-7 केस। एक छोटी सी विधि, सवेरे उठकर 108 बार लिखेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, रात को सोने से पहले 108 बार लिखेंगे मैं एक महान आत्मा हूं। हम भगवान के बच्चे हैं ना, हम महान हैं। ये नहीं मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने बड़े पाप किए, नीच पापी कपटी हूं, ये कहना छोड़ दो अब। मैं भगवान की संतान हूं, पुण्य आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, ये दोनों लिखेंगे डिप्रेशन बहुत जल्दी जाएगा। लेकिन एक तीसरी बात भी बिल्कुल ओपनली बोल देना चाहता हूं, डिप्रेशन उन लोगों को हो रहा है या होगा जिनके पाप कर्मों का खाता बढ़ा हुआ है, जिन्होंने दूसरों को दुख बहुत दिया है, सताया बहुत है, दूसरों की संपत्ति हनन की है, दूसरों के सुखी जीवन में जहर घोला है। इसलिए एक सुंदर चीज है, मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं। मान लो 1000 साल पहले आप कहीं राजा थे और आपने कोई गलत ऑर्डर दे दिया था और 1000 लोगों को कष्ट हुआ था, उन्होंने बद्दुआएं दी थी, राजा बड़ा गंदा है, क्रूअल है, निर्दयी है, पता नहीं कब मरेगा। वो जो बद्दुआएं हैं ना, अब तक आपका पीछा कर रही हैं। आपने पुनर्जन्म ले लिए, हो सकता है 25 ले लिए हों इतने सालों में, वो बद्दुआएं आपसे जुड़ी हुई हैं अब तक, वो आपको रात को सोने नहीं देंगी, वो आपको डिप्रेशन में लाएंगी। डिप्रेशन के साथ अनिद्रा की समस्या भी बढ़ती जा रही है, उसमें भी यही काम करेंगे। तो 7 दिन तक केवल क्षमा याचना कर लो सवेरे उठते ही कि मैंने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में हजारों सालों में जिनको भी कष्ट दिया हो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं, आप सभी सुखी हो जाओ। दुआएं भी दे दो, सुखी भव, शांत भव। ये जो बद्दुआएं आ रही हैं ये कट जाएंगी। एक सुंदर अनुभव जो आज ही मुझे सुनने को मिला, सुना देता हूं। बॉम्बे में जैन परिवार, जैनियों में क्षमा याचना का बड़ा महत्व है। साल में एक बार वो 1 घंटा करते हैं हॉल में, अंधेरे में बैठ के सिर ढक के। मुझे भी एक बार करा दिया था, बैठा दिया था, क्लास भी कराओ और इनके साथ भी बैठो। तो बताया एक जैनी परिवार, अभी भाई बहने साथ रहते, किसी बात पे मन मुटाव हुआ जैसे आजकल हो जाता है, बीच में दीवार खींच दी। अभी बॉम्बे में पहले ही घर छोटे 3 रूम का, उसमें भी दीवार। बॉम्बे में हम लोग गए थे, हमारी गीता बहन इस पे क्लास कराती है बहुत अच्छा, जिसने भोग पर क्लास कराया ना तो उसने क्षमा पर क्लास कराया। आज ही समाचार मिला कि घर जाते ही उन्होंने हथौड़ों से दीवार तोड़ दी, 4 इंच की थी, और मिस्त्री को मिला के क्लीन कर दिया, प्यार बढ़ गया। इतना अच्छा प्रभाव है। तो जिसको नींद ना आती हो वो भी ये 3 काम करेंगे, सवेरे लिखना, रात को लिखना, क्षमा याचना करना। चौथी भी एक विधि है जिसकी सीरियस प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को 20 साल से नींद नहीं आई, बहन ने कहा मैं 20 साल से डिप्रेशन में हूँ,
30 साल
से डिप्रेशन में हूँ, तो इसमें क्या इनकी दवाइयाँ नहीं होती? ब्रेन डिप्रेशन से वीक हो जाता है, अनेक उसकी शक्तियां अंदर में डैमेज हो गई हैं। एनर्जी देना सीखें आप अभी, हाथ मलें दोनों और मन में याद करें मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। तेज मलें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्ति। अब हाथ छोड़ दीजिए आप नजदीक थोड़ा, और देखो आपके हाथों से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, करंट एनर्जी निकल रही है, और करेंगे प्रैक्टिस पावरफुल निकलेगी। इसको ब्रेन पर रख दो ऐसे, जिनको नींद नहीं आती उनकी माताएं या उनकी पत्नी सिराने बैठकर ऐसे रख दे उनके हाथों पर, दोनों हाथ ब्रेन पर। एक मिनट रखना है, फिर दोबारा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, फिर एक मिनट रख दो। जिन जिन को मैंने कराया मेरी नॉलेज में जो हैं, 5 मिनट में ही सो गए, जो कहते थे 7 साल से, ऐसे लोग थे, ऐसी माताएं थी जो कहती थी 7 साल से भाई जी सोई नहीं हूं। मैंने कहा सोती तो हो, नहीं तो तुम जिंदगी कैसे होती? कि नहीं मैं सोई नहीं। उसमें क्या होता है कि मनुष्य सोता तो है, देखने वालों को दिखता है खराटे ले रहे हैं, लेकिन जब उठे तो कहेंगे नींद ही नहीं आई। क्यों? बहुत ज्यादा स्वप्न होते हैं, ब्रेन हाइपर एक्टिव रहता है, तो पूरी तरह वो शांत नहीं होता, इसलिए वो नींद नींद का सुख नहीं देती है।
कहा है कि खुद तो पॉजिटिव रहने के लिए हम कुछ न कुछ युक्ति निकालते हैं, परंतु दूसरों को पॉजिटिव बनाने के लिए कैसे उनको प्रेरित करें?
प्रश्न बहुत गहरा है, उत्तर सिंपल है, गहरा और सिंपल, डीप एंड सिंपल। सुन ले आप ध्यान से, ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? मन को ही मनोवैज्ञानिकों ने कई हिस्सों में बांटा है, 5 में बांटा है। उसमें कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अर्ध चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड अचेतन मन, फिर हायर कॉन्शियस माइंड थोड़ा ऊंचा मन, फिर सुपर कॉन्शियस, जब हम सुप्रीम से जुड़ जाते हैं उसको सुपर कॉन्शियस माइंड कह दिया। इसमें 2 की चर्चा बहुत है, चेतन मन जिससे हम सोच रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जो अर्ध चेतन मन है, शास्त्रों में इसको चित्त कहा गया है, जो रात को भी जगा रहता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ये योग है, क्योंकि मूल वृत्तियां चित्त में समाई रहती हैं। अब इस सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रयोग है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। जिस व्यक्ति को आपको बदलना हो, किसी को क्रोध बहुत आता हो, कोई शराब पीता हो, कोई आपसे लड़ता हो, शत्रुता बहुत रखता हो, वेस्ट मनी कर रहा हो, सवेरे 5 बजे जब वो सोया हो, अगर वो 5 बजे उठ जाता है तो आप 4 बजे करेंगे, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड यानी अंतर मन जगा है, फुल्ली एक्टिव है। अब जिन्होंने राजयोग सीखा वो पहले करेंगे, 5 मिनट उसको आत्मा से वाइब्रेशंस देंगे, गुड वाइब्रेशंस। इसकी विधि ये होती है, परमात्मा के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, मुझसे उसको जा रहे हैं, सिंपल। उसके बाद 5 मिनट के बाद आप उसे आत्मा देखते हुए चेहरा सामने लाएंगे, चाहे वो दूर हो, कहीं भी हो या आपके पास हो, आत्मा देखेंगे, यहां चमकती हुई आत्मा बैठी है, उससे बातें करेंगे, और बातें करने में पहली 3 बातें बहुत अच्छी करेंगे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम भगवान की संतान हो, तुम महान हो, इससे उसकी सोई हुई चेतना जग जाएगी और फिर उसे वो संकल्प दो जो आप चाहते हैं। वो क्रोध करता है तो उसे संकल्प दो शांत हो जाओ, क्रोध बहुत बुरा है, छोड़ दो। वो शराब पीता है, ये शराब तो राक्षसों का भोजन है, छोड़ दो, तुम्हें देवता बनना है। निगेटिव बहुत है, निगेटिविटी से एनर्जी नष्ट होती है, पॉजिटिव हो जाओ। 7 दिन आप करेंगे ना, तो जो संकल्प आपने उसको दिए हैं उठते ही वो वही करेगा और 21 दिन करने पर उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाएगा। ये चित्त की वृत्तियों को बदलने का बहुत सुंदर तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हैं।
बहुत सुंदर बात बताई भाई साहब ने। अभी कुछ दिन पहले भाई साहब ने समाधान में एक बात बताई होगी, तो हमारे बिल्कुल सेंटर के साथ में एक फैमिली है, तो उनका आपस में बहुत अपने ही देरानी जेठानी के बीच में बिजनेस एक है पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लास में भी आते हैं। तो मुझे कहते हैं दीदी मैं आज ना सूरज भाई जी का क्लास देख करके आई। तो मैंने कहा क्या सुना, तो कहते उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। मैंने कहा क्या बताई, कहते उन्होंने कहा कि आप ये सोचो 11 दिन के लिए आप लिख करके आओ कि 11 बार सिर्फ आज आपने 11 बार लिखना है कि मैं महान आत्मा हूँ। तो कहती मैंने उस दिन से शुरू कर दिया, मतलब उस बहन के जो संस्कार है बहुत रिजिड है, तो कहती फिर मैंने शुरू कर दिया, मेरी बहू महान आत्मा है, मेरा बच्चा महान आत्मा है, मेरा पति महान आत्मा है, मेरी देरानी महान आत्मा है। तो कहती कि धीरे 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 मेरे अंदर जो टेंशन था वो कम होने लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा दूसरी बात क्या कही, कहते भाई साहब ने कहा आज 21 बार लिख करके आओ। ऐसे करते करते करती कहती हैं उनके हस्बैंड जो है वो पक्के बाबा के बच्चे हैं, उसको भी आश्रम पे आने के लिए वो रोकती थी, लेकिन आज वो इतनी पॉजिटिव हो गई कि दोनों ही क्लास में आते हैं और संबंधों के अंदर इतने मीठे संबंध उनके हो गए हैं। तो आप सभी समाधान जरूर देखा करिए और उस अनुसार प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपकी आधी समस्याएं, हम तो कहेंगे पूरी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। और किसी का प्रश्न है?
पूरे हो गए आपके?
हाँ जी।
अच्छा अरे वाह बड़े।
और किसी के प्रश्न है? जी
आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।
दुनिया के अंदर जो महात्मे हुए धर्मात्मा गौतम बुद्ध, जो मेडिटेशन जो सवाल पूछा था कोई बहन जी ने, उसके ऊपर मेरा सवाल है कि आंखें बंद कर वे दिखते, गुरु नानक जी है, गौतम बुद्ध है, विवेकानंद है, राष्ट्र संत तुकड़ो जी है, जिन्होंने अपना नया मार्ग खोजा खुद का या परमात्मा का, तो सब मेडिटेशन के अंदर आंखें बंद की हुई दिखती। और राष्ट्र संत तुकड़ो जी कहते हैं उनके प्रार्थना के अंदर जो यही उनका लगाव है कि अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागरूक रहना है, ओहम सोहम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि नहीं रखना है, ये उनका प्रार्थना का पहला वाक्य है। इसलिए मेरा ये सवाल है कि मेडिटेशन के अंदर पहली बार जैसा वो बहन जी ने प्रश्न पूछा तो वही सवाल मेरा है कि इन्होंने जो चित्र के अंदर अपने को दिया है आग बंद करके मेडिटेशन हो रहा है, तो फिर ये सही है कि ये गलत है, कि ये सही है वो गलत है, क्या है?
आप करके देख लो, जिसमें ज्यादा आनंद आए वो करते रहना।
मेरे को आंख बंद करके अच्छा लगता है।
ठीक है, अब ये राजयोग आप सीख लो और आंख बंद करके ही करना।
हाँ।
बहुत मजा आएगा।
ठीक है,
ठीक है।
हाँ, ओके।
और किसी का प्रश्न? भैया माइक दे दो।
बोलो बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा। सफाई का फोबिया है भाई इनको, बस ठीक है ठीक है, मैं रिपीट कर दिया। आपको पता है ना कि आपको है। कई बहनों को साबुन से हाथ धोने की आदत पड़ जाती है, स्किन खराब हो जाती है, एक साबुन रोज खर्च कर देती हैं, कई टंकी खाली कर देती हैं नहाने में, बच्चों को भी नहाने का पानी नहीं बचता। ऐसे ज्यादा तो नहीं, 7-8 प्रयोग हमने कराए हैं, क्योंकि ये केस बहुत कम आते हैं, आप भी उस अनुभव से ठीक हो जाएंगी। देखिए सीधी सी बात है कि मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ये क्यों बात है ना इसका। आज सवेरे उठकर 21 दिन लिख दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, आपकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी और फिर आपको जो ये हो गया है वो ठीक हो जाएगा। एक लंदन की बहन आई, मैं बहुत सफाई प्रेमी हूं और इस कारण दो नौकरानियों से मेरा रात दिन झगड़ा रहता है। मैंने कहा आप सफाई प्रेमी तो हो पर अंदर की सफाई का क्या हाल है, अंदर तो मैला हो गया ना। वो बेचारी दो नौकरानी जो घर से काम करने आई हैं, वो भी भारी होके जाएंगी सारा दिन डांट डपट खाके। मैंने उनको एक सूत्र समझा दिया, जब तक मनुष्य स्वयं परफेक्ट नहीं बना उसके कार्य परफेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए सफाई को परफेक्ट करने का चक्कर छोड़कर मन को पूरी सफाई करा दो तो बाकी सफाई आप ही हो। दुनिया की सफाई, मोदी जी ने दुनिया को साफ करा दिया या नहीं? बिहार को छोड़ के, कोई बिहारी बैठा हो तो बुरा ना मानना, बिहार में तो गंदगी के ढेर। हमें भी चला गया, मैंने कहा भाई मोदी जी का पूरा अभियान तो यहाँ फेल नजर आ रहा है, लेकिन और देशों में बहुत अच्छा प्रभाव, प्रदेशों में बहुत अच्छा प्रभाव रहा। इंदौर में मैं गया था, जब उसको फर्स्ट प्राइज मिला सचमुच देखने लायक थी वहां की सड़कें। हम तो कभी भी जाते थे इधर उधर, कहीं कागज का टुकड़ा भी नहीं मिलता था। तो ठीक है, अब आप ये लिखना और ये फोबिया आपका चला जाएगा। दो इनको
अपना अनुभव।
हाँ अब मुझे बता दो, मैं बोलूंगा। अच्छा,
तब ये युगल को कैंसर हो गया था।
अच्छा,
तीसरी स्टेज भी लास्ट।
ठीक है ठीक है। आए हुए, मुझे मिला भी देना उनको कल। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। खड़े हो जाओ भाई, ये खड़े आगे आ जाओ आप प्लीज। देखो भाई, इनको कितने समय से कैंसर था, कितने साल से? बहुत साल से इनको कैंसर था और तीसरी स्टेज थी। दिखा दो भाई इन्हें, लास्ट स्टेज। और इन्होंने 4 बजे का मेडिटेशन किया, पानी चार्ज करके पिया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मेडिटेशन भी किया, पानी चार्ज भी। आपको बधाई हो नए जीवन की और सदा स्वस्थ रहें, जीवन का आनंद। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स तो कहेंगे कोई और, कहा वही है जो आपका भी पिता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इनका अनुभव सुन के मुझे एक अनुभव बताने की इच्छा हो गई। बैठिए। एक युवक छोटी आयु का, मुझे तो उसको देख के लगा था वो 20-22 साल से ज्यादा नहीं होगा। उसको पता नहीं कैसा बुखार हुआ, प्लेटलेट इतनी तेजी से गिर रही थी कि डॉक्टरों ने उसे कह दिया केवल 4 घंटे जी सकते हैं। कविता बहन, और उसको उस डॉक्टरों ने कहा भाई किसी को फोन करना हो, किसी को बुलाना हो, हमें बता दो या तुम बुला लो, 4 घंटे ही जी सकोगे। सवेरे डॉक्टरों की टीम आ गई उसे देखने के लिए। वो बाहर बगीचे में आनंद पूर्वक घूम रहा था तेजी से। क्या हुआ, मैं आप सबको एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर एलोपैथी में किसी बीमारी का इलाज नहीं है, आयुर्वेद में है, होम्योपैथी में है, उसको उसी टाइम उसका कोई फ्रेंड होम्योपैथ आ गया, उसने उसको एक ऐसी गोली दी कि उसकी प्लेटलेट जो तेजी से गिर रही थी ना, तेजी से बढ़ गई, 3 लाख पर पहुंच गई और वो सवेरे तक ठीक हो गया। इसमें काम करता है मनुष्य का कॉन्फिडेंस। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में आप अपने आत्मविश्वास को खोए नहीं। और मैं जो एक प्रैक्टिस सब जगह कराता हूं वो आप भी कर लें। ये गहरी बात मैं सबको सिखा रहा हूं और मेरी इच्छा है संसार का हर व्यक्ति इसको सीख ले। मैं भी इसके बहुत प्रयोग करता हूं और आप जितने बैठे हैं या जो टीवी पर देखेंगे, मैं ये बात हर जगह बताता हूं ताकि सभी लोग सीख लें, क्योंकि एक बार बताने से लोग फिर भूल जाते हैं। देखिए गुह्य रहस्य यह है कि हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, हमारे हर विचार से शक्ति पैदा होती है। वो शक्ति पहले हमारे ब्रेन में जाती है, पूरे शरीर में फैलती है, बाहर फैलती है, प्रकृति में जाती है, प्रकृति और उसमें रिएक्शन होता है, वही चीज वापिस आती है। हमारे हर संकल्प से शक्ति पैदा होती है, याद रहेगा, याद रहेगा। जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा, नोट कर लें बुद्धि में, जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। उल्टा संकल्प करेंगे उल्टा निर्माण, अच्छा करेंगे तो अच्छा। एक व्यक्ति ने अपने मन में समा लिया है, मैं तो गरीब हूं, मेरा भाग्य खराब है, मैं तो गरीब हूं, तो उसकी गरीबी कभी जाएगी नहीं। एक व्यक्ति ने चित्त में समा लिया है, मैं तो बहुत बीमार हूं, लगता है अब तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। स्टैंप लगा दिया ना अपनी बीमारी को, ऐसे ही जीना पड़ेगा। जो माताएं गलती करती हैं वो ठीक कर लें। आप सवेरे उठकर रोज संकल्प किया करें, मेरे जैसा भाग्यवान। ठीक है या नहीं ये बात? मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। अरे शरीर में आंखों की कीमत कितनी है? कोई आपको कहे 10 करोड़ देता हूं दोनों आंखें दे दो, कितने लोग देंगे आप में से? कोई नहीं देगा। एक हाथ दे दो अपना, ले लो 5 करोड़, कोई देगा? कितनी कीमत है, हम धनवान हैं। मैं जो आपको संकल्प कराना चाह रहा हूं वो ये है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। समा दो इसको अपने अंदर, सवेरे उठ के 21 दिन कर लो अच्छी तरह 5-7 बार, ताकि ये नेचर बन जाए हमारी। और बीमारी आए, झंझट आए, आपके मन में एक ही विचार आए, नो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बोल दो जरा मेरे साथ, आप देखेंगे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैंने इसके बहुत प्रयोग करे। पहले हम दिल्ली में जाते थे, दिल्ली से फ्लाइट लेते थे, अब सेंटर से चले, रास्ते में भीड़ ही भीड़, जाम ही जाम, लग रहा प्लेन तो छूटेगा, पक्का छूटेगा, क्योंकि हमें कम से कम 50 मिनट पहले वहां होना चाहिए और हमारे पास 30 मिनट बचे, छूटेगा, पैसे गए सारे। और मैं संकल्प कर रहा हूं प्लेन तभी उड़ेगा जब हम बैठेंगे। वहां जाते ही पता चला प्लेन 1 घंटा लेट है। हमारे संकल्पों में बहुत पावर है, भूलना नहीं है। तो ये संकल्प पक्का करके जाना, रिपीट कर देता हूं, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, हमारे हर संकल्प में निर्माण शक्ति है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूं। सोते हुए भी मुस्कुराना, उठते हुए भी मुस्कुराना, हो सकता है? सोते हुए भी मुस्कुराना, उठते हुए भी मुस्कुराना, भाग्य मुस्कुराना लगेगा, जिंदगी मुस्कुराने लगेगी। इसको साथ लेके जाना और प्रैक्टिस करना। ये नहीं उठे, मूड ऑफ है, नींद ही नींद आ रही है, बड़ी सुस्ती है, मुस्कुराना तो बोलो, दूसरों का मुस्कुराना खत्म कर देते हैं, सो रहे हैं, आज ये समस्या थी, वो समस्या थी, ये किया वो किया, उसने बड़ा तंग किया मुझे, उसने लेग पुलिंग कर दी, उसने ये, इन विचारों को लेकर सो रहे हैं, दिमाग भारी हो रहा है। टीवी और इंटरनेट ने इस सबसे बड़ा श्राप दिया मनुष्य को। सो रहे हैं, व्हाट्सअप 100 सूचनाएं, आधी झूठी। मेरे साथ भाई रहता है, मेरे पास लाया व्हाट्सएप संदेश, कुवैत में टेम्परेचर 62 डिग्री तक पहुंच गया, कारें पिघल रही हैं, बिजली भी नहीं है। जब उसने कहा बिजली भी नहीं है, लिखा था ना उस पर, मैंने कहा झूठा है भाई, कुवैत का नाम ही ना होता अब तक, 5 मिनट में नष्ट। ऐसे फेक न्यूज जिसको फेंक देना चाहिए, मैं कहता हूं फेक न्यूज है, फेक नहीं, फेक न्यूज। झूठे समाचारों को फेक न्यूज कहते हैं। फेंक दो ऐसे न्यूज को, ये गंदगी लेकर न सो न उठो। क्या बताया मैंने, मुस्कुराते हुए उठेंगे, मुस्कुराते हुए सोएंगे, और इसकी विधि है उठते ही अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग करना और फील करना उसका हाथ मेरे सिर पर आ गया। बच्चों के सिर पे हाथ रखते हैं ना आप, जब वो आपके पैर छूते हैं सवेरे, रात को सोते समय उसे गुड नाइट करके सोना, फील करना गुड नाइट करते ही उसने मुझे गले से लगा लिया है, सारे दुख दर्द हर लिए। देखो, सोएंगे भी आनंद में, उठेंगे भी आनंद में, जीवन आनंद का भंडार बन जाएगा। बस समय हो गया, थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब का, कि आपने बहुत सुंदर, हमारे प्रश्न थे उसके अपना निचोड़ निकाल करके बहुत शॉर्ट में हमें आंसर दिया, और भाई साहब इतना व्यस्त होते भी हमारे बीच में आए, तो हम आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद करते हैं। और दूसरा, भाई साहब की एक दिल की इच्छा है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, कि आप सभी भाई बहन अपना अमूल्य टाइम निकाल करके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आपका कहने का सभी को यही भावार्थ है कि यहाँ से जाने के बाद आप अपने आसपास के जो भी सेवा केंद्र है वहाँ पर जाएंगे, राजयोग मेडिटेशन कोर्स करेंगे, और डेली हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस होती हैं, जिसको हम ज्ञान मुरली क्लास कहते हैं, अगर वो सुनने की आदत डाल दी तो भाई साहब ने कहा ना 100% आप क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे।
कुछ पूछ रहे हैं, बोलो
सर। एक संक्षिप्त में एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ सर, कि शंकर जी की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका बीच का रोल क्या है और विनाश कैसे करते हैं?
ये तो हम भी पूछा करते हैं लोगों से कि महादेव जी को तो शरीर है, उनके बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, फैमिली है, उनका बाप कौन था भाई? ब्रह्मा जी को भी शरीर है, भले ही चार
सभी 2 मिनट बैठे रहेंगे,
उनका माता पिता कौन था? एक्चुअली ये गुह्य बात है, सबकी समझ में नहीं आएगी। पुरुषोत्तम संगम युग पर जब भगवान आकर ये राजयोग की तपस्या सिखाते हैं, उनमें कुछ आत्माएं, आपने सुना होगा पुराणों में 11 रुद्र हुए हैं, एक रुद्र नहीं 11, तो उसमें से कुछ आत्माओं ने गहन तपस्या की है, उस तपस्या की यादगार महादेव जी हैं, नहीं तो भला भगवान को तपस्या करने की क्या जरूरत। उनके गले में सांप इस बात का प्रतीक है, उन्होंने मनोविकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली। यहाँ से निकलती हुई गंगा इस बात का प्रतीक है, उनकी बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रही, ज्ञान फ्लो होता रहा। उनके यहाँ मस्तक पर चंद्रमा इस बात का प्रतीक है, उनका चित्त संपूर्ण रूप से शीतल हो गया। नग्न अवस्था केवल शेर की छाल खाल ये प्रतीक है, वो पूरी तरह से अशरीरी हो गए। तीसरा नेत्र ज्ञान का संपूर्ण रूप से खुल गया, ये एक महान तपस्वी की पहचान है, उसका सिंबॉलिक रूप है शंकर जी। चलें अब 3 मिनट योग करेंगे फिर उठेंगे. रेड लाइट प्लीज. मगन होंगे और शिव बाबा से एनर्जी रिसीव करेंगे.